कल्पना कीजिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच चल रहा है और एक टीम बुरी तरह से हार रही है, मतलब स्कोर बहुत पीछे है।
हाँ, और हर एक खिलाड़ी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है।
बिल्कुल, मैदान पर उनकी सारी रणनीतियां विफल हो चुकी हैं और अब ऐसा लगता है जैसे उनके पास खेलने का कोई कारण ही नहीं बचा है।
हाफ टाइम हो चुका है ना, और खिलाड़ियों का मनोबल एकदम जमीन पर है। उनके चेहरों से और उनके झुके हुए कंधों से साफ दिख रहा है कि वे अब और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।
और ऐसी स्थिति में अक्सर लोग मैदान छोड़ देना ही बेहतर समझते हैं।
एकदम सही, कोई भी हार मान लेना चाहेगा।
लेकिन ठीक उसी समय कोच लॉकर रूम में आता है और वो बोर्ड पर कोई नई खेल की रणनीति या मतलब कोई नया फॉर्मेशन नहीं समझाता।
वो सीधे उनकी हिम्मत पर बात करता है ना।
हाँ, वो सीधे खिलाड़ियों की आंखों में देखता है और उनके जज्बे, उनके अंदर बैठे गहरे डर और उनके खोए हुए आत्मविश्वास पर बात करना शुरू करता है। वो उनके दिलों को झकझोरने की कोशिश करता है।
और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की चर्चा जुड़ती है।
बिल्कुल ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हमारा स्रोत है डॉक्टर डेविड ए डी सिल्वा का इब्रानियों 10:19-39 पर किया गया एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण, जिसका विषय है उद्धार तक दृढ़ बने रहना।
और आज हमारा मिशन ये खोजना है कि कैसे प्राचीन लेखकों ने एक हाशिए पर पड़े, डरे हुए और सताए गए समुदाय को हार न मानने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने डर, आत्मविश्वास और सामूहिकता का इस्तेमाल किया।
हाँ, एक ऐसा बेहतरीन मिश्रण तैयार किया जिसने ना सिर्फ उस समय लोगों को बिखरने से बचाया बल्कि
यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल, आज के आधुनिक समाज की चुनौतियों में भी यह रणनीति बहुत काम आती है।
लेखक यीशु के पुरोहिती कार्यों, बलिदानों की प्रकृति और मतलब पुराने नियम के भारी भरकम सिद्धांतों पर बात कर रहा था।
हाँ, बहुत सारा थियोलॉजिकल ज्ञान दिया जा रहा था।
लेकिन अध्याय 10 श्लोक 19 तक आते आते चीजें अचानक एक नया मोड़ ले लेती हैं। मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा जैसे
गियर बदल गया हो।
हाँ एकदम,
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है।
ये पत्र का वो बिंदु है जहाँ लेखक का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। श्लोक 19 से वो अचानक सिद्धांत की व्याख्या यानी एक्सपोजिशन से आगे बढ़कर आवाहन या कर्म यानी एक्सोर्टेशन की ओर मुड़ जाता है।
मतलब वो उनसे कुछ करने को कह रहा है।
सही कहा, वो श्रोताओं से स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अब तक जो ज्ञान या सैद्धांतिक बातें सीखी गई हैं, उनका असली उद्देश्य जीवन में एक ठोस कदम उठाना।
हाँ, और अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहना।
हाँ, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समुदाय के करीब आना। तो इस बिंदु पर एक स्वाभाविक सा सवाल ये पैदा होता है कि ये कर्म या ये ठोस कदम आखिर है क्या? मतलब लेखक उनसे क्या करने की उम्मीद कर रहा है?
वो उन्हें बता रहा है कि उनके पास अब एक ऐसी नई पहुंच या कहने एक्सेस है जो इतिहास में पहले कभी किसी के पास नहीं थी।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी आम इंसान को दुनिया के सबसे बड़े और भव्य कॉन्सर्ट का VIP बैकस्टेज पास मिल गया हो।
ये VIP पास वाली तुलना बहुत सटीक है।
है ना, एक ऐसी जगह जहां पहले केवल कुछ बेहद खास लोगों जैसे महायाजकों को ही जाने की अनुमति थी, अब वहां सबके लिए दरवाजे खुले हैं।
हाँ, और प्राचीन यहूदी संदर्भ में परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, जिसे होली ऑफ होलीज कहा जाता था, वो बहुत ही भयानक और रहस्यमय जगह थी
जहां जाने से लोग डरते थे।
बिल्कुल, लेकिन लेखक कहता था कि यीशु के रक्त के माध्यम से अब विश्वासियों के पास उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस है। यूनानी भाषा में इसके लिए पैरेसिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
पैरेसिया, ये शब्द तो मुझे थोड़ा राजनीतिक सा लगता है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, प्राचीन ग्रीक और रोमन दुनिया में पैरेसिया का अर्थ सिर्फ साधारण हिम्मत नहीं था, ये एक नागरिक का बिना किसी डर के खुलकर बोलने का अधिकार था।
अच्छा, तो ये एक नागरिक अधिकार जैसा था।
हाँ, यहाँ लेखक कह रहा है कि परमेश्वर के सामने जाने के लिए अब किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे पूरे अधिकार और निर्भयता के साथ जा सकते हैं।
और इस अधिकार के साथ शुद्धिकरण की एक बहुत गहरी अवधारणा भी जुड़ी हुई है ना, जहाँ लेखक छिड़के गए दिल और साफ पानी से धुले हुए शरीर की बात करता है।
हाँ, यह स्पष्ट रूप से बुरे विवेक से मुक्ति और बपतिस्मा का संकेत है।
मतलब ये एक ऐसा कदम था जो उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग करके एक नई पहचान दे रहा था।
बिल्कुल, और यह नई पहचान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, यहीं से समुदाय की भूमिका शुरू होती है।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया से अलग थलग महसूस करता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है।
हाँ, उसे एक ऐसे समूह की आवश्यकता होती है जो उसे गिरने से बचा सके।
और यहाँ विषय सचमुच बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इसी सामुदायिक सहारे की बात करते हुए स्रोत में अनुवाद से जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है।
अनुवाद की समस्या श्लोक 24 वाली?
हाँ, श्लोक 24 को अगर हम देखें तो अधिकांश अंग्रेजी अनुवाद जैसे कि NRSV कहते हैं कि एक दूसरे को प्रेम और अच्छे कामों के लिए उकसाएं या प्रोवोक करें।
प्रोवोक करना,
यह हिस्सा मुझे स्रोत पढ़ते समय बहुत अजीब लगा। आधुनिक अनुवादकों ने इतने सुंदर विचार को उकसाने जैसा अजीब और थोड़ा आक्रामक क्यों बना दिया?
हाँ, ये सुनने में थोड़ा नकारात्मक लगता है।
बिल्कुल, उकसाना शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी को जबरदस्ती कोई काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका मूल यूनानी शब्द जो है काटानाओमेन।
काटानाओमेन, इसका असली अर्थ क्या है?
इसका अर्थ किसी को उकसाना, किसी से बहस करना या मोटिवेट करने की कोई कृत्रिम तरकीब खोजना बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत गहरा अर्थ है एक दूसरे को देखना, ध्यान देना या पूरी तरह से ऑब्जर्व करना।
अच्छा, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक सरसरी नजर डालना नहीं है कि हाँ सब ठीक है।
एकदम सही, काटानाओमेन का मतलब है किसी व्यक्ति की स्थिति पर गहराई से मनन करना,
यानी सच में उनके हालातों को समझना।
हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के संघर्षों, उनकी छिपी हुई चुनौतियों, उनके आर्थिक या सामाजिक दर्द को गहराई से देखता है तो उसका परिणाम एक स्वाभाविक विस्फोट की तरह होता है।
प्रेम और अच्छे कामों का विस्फोट।
बिल्कुल, किसी की समस्याओं को वास्तव में देखना ही परवाह का जन्मस्थान है। हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं अगर हम ये ही नहीं देख पा रहे हैं कि वे अंदर से किस बात से जूझ रहे हैं?
ये बहुत ही खूबसूरत विचार है कि सिर्फ किसी के दुख को सच में देख लेना ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।
और यही वो चीज है जो एक सच्चे समुदाय का निर्माण करती है।
लेकिन मुझे एक बात समझ में आई, अगर ये VIP एक्सेस, ये बिना डरे परमेश्वर के सामने जाने का अधिकार और एक दूसरे को गहराई से देखने वाला ये जुड़ाव इतना ही शानदार है,
तो कोई इसे छोड़ना क्यों चाहेगा?
हाँ, कोई इसे छोड़कर जाना ही क्यों चाहेगा? और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका परिणाम क्या होगा?
यहाँ से लेखक अपनी बात के दूसरे पहलू पर आता है जहाँ वो केवल प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है।
वह जानबूझकर किए गए पाप की बात करता है, लेकिन यह हिस्सा थोड़ा उलझाने वाला है। जानबूझकर किया गया पाप सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी से भी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली कोई साधारण सी भूल,
जैसे झूठ बोलना या गुस्सा करना।
हाँ, या कोई छोटी नैतिक कमजोरी। क्या यहाँ उसी की बात हो रही है?
ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर इस पाठ को पढ़ते समय होती है। यहाँ रोजमर्रा के उन संघर्षों या मानवीय कमजोरियों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है जिनसे इंसान हर दिन जूझता है।
अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है?
इस विशेष पत्र और उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ में जानबूझकर किया गया पाप का मतलब बहुत ही विशिष्ट था। इसका अर्थ था मसीही समुदाय से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना,
यानी दबाव में आकर टूट जाना।
हाँ, बाहरी दुनिया के दबाव या उत्पीड़न से बचने के लिए अपनी आस्था को पूरी तरह नकार देना।
तो ये रास्ते पर चलते हुए गलती से ठोकर खाने जैसा नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर अपने नक्शे में आग लगा देने और अपनी मंजिल से पूरी तरह मुंह मोड़ लेने जैसा है।
ये उपमा बिल्कुल सटीक है। जब कोई जानबूझकर उस आस्था को नकार देता है जिसने उसे नई पहचान दी थी, तो वो केवल एक नियम नहीं तोड़ रहा होता,
वो तो पूरी नींव ही हिला रहा है।
स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि ये मूसा की व्यवस्था तोड़ने से भी बदतर क्यों है।
मूसा की व्यवस्था, उसमें तो बहुत कड़ी सजा थी, है ना?
बिल्कुल, व्यवस्था विवरण में यदि कोई व्यवस्था तोड़ता था और 2 या 3 गवाह उसकी गवाही देते थे तो उसे बिना किसी दया के मृत्युदंड दिया जाता था। ये अपने आप में एक बहुत कठोर सजा थी।
बाप रे, बिल्कुल।
लेकिन इब्रानियों का लेखक कहता है कि एक समुदाय से पीछे हटने और आस्था को नकारने को उससे भी कहीं बड़ा अपराध माना जाना चाहिए।
मृत्यु दंड से भी बड़ा अपराध? क्यों?
क्योंकि ये साधारण अवज्ञा नहीं है, ये ईश्वर के सम्मान पर किया गया एक तेहरा प्रहार है।
तेहरा प्रहार? हाँ। इस प्रहार में कौन कौन सी बातें शामिल थी?
इसके 3 बहुत ही गंभीर चरण बताए गए हैं। पहला, ये ईश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदने के समान है।
ये तो बहुत ही कठोर शब्द है।
हाँ, ये केवल अस्वीकार करना नहीं है बल्कि उस बलिदान का घोर अपमान करना है। दूसरा, उस अनुबंध के रक्त को अपवित्र या साधारण मानना है जिसने व्यक्ति को शुद्ध किया था,
और तीसरा
अनुग्रह के आत्मा का यानी स्पिरिट ऑफ ग्रेस का अपमान करना है। उस प्राचीन ग्रीक रोमन दुनिया की कल्पना करें जहां समाज सम्मान और शर्म के सिद्धांतों पर चलता था,
जहां इज्जत सबसे बड़ी चीज होती थी।
बिल्कुल, उस समाज में किसी महान उपकारी यानी डिवाइन बेनिफैक्टर द्वारा दिए गए इतने बड़े उपहार को ठुकरा देना सबसे बड़ा अपमान माना जाता था।
ये तो बहुत गहरी बात है।
गिनती की पुस्तक में भी अनजाने में किए गए पाप और ऊंचे हाथ यानी अहंकार से किए गए पाप के बीच एक गहरा अंतर स्पष्ट किया गया है।
तो मतलब प्राचीन दुनिया में जानबूझकर किए गए अपराधों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था।
हाँ, प्राचीन ग्रीक रोमन नैतिकतावादी भी मानते थे कि जानबूझकर किए गए अपराध जिनमें उपकारी के प्रति कृतज्ञता शामिल हों सबसे कड़ी सजा के योग्य होते हैं।
ये तो सच में बहुत डरावना विचार है। एक तरफ अनंत दया है, लेकिन दूसरी तरफ इस दया को ठुकराने पर इतना भयानक न्याय।
ईश्वर के हाथों में पड़ने के डर के बाद तो कोई भी सहम सकता है।
बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस गंभीर चेतावनी के तुरंत बाद लेखक उन्हें वहीं निराश या डरा हुआ नहीं छोड़ता।
हाँ, वो वापस एक कोच की भूमिका में आ जाता है।
वो उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करता है, और वो हथियार है उनकी अपनी यादें। वो कहता है पुराने दिनों को याद करो।
यहाँ लेखक का मनोवैज्ञानिक कौशल दिखाई देता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि जब वे नए नए इस मार्ग पर आए थे तब उन्होंने कितनी भयंकर कठिनाइयों का सामना किया था।
और यहाँ वो फिर से एथलेटिक इमेजरी का उपयोग करता है ना?
बिल्कुल, वो उनके दुखों, उनके सार्वजनिक अपमान और उनके द्वारा झेले गए उत्पीड़न को केवल पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि एक महान प्रतियोगिता या ग्रेट कॉन्टेस्ट के रूप में चित्रित करता है।
वो उन्हें याद दिलाता है कि कैसे जब कुछ लोगों को जेल में डाला गया तो बाकी समुदाय ने छुपने के बजाय उनका साथ दिया।
हाँ, अपनी परवाह किए बिना वे साथी बंदियों के साथ खड़े रहे।
तो इस सब का क्या मतलब है? ये मुझे उस मैराथन धावक के समान लगता है जो दौड़ के उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां उसका शरीर पूरी तरह हार मान रहा होता है।
हाँ, इससे खेल की भाषा में अक्सर द वॉल कहा जाता है।
एकदम सही, द वॉल, जहां धावक को लगता है कि वह एक कदम भी और नहीं रख सकता, तब वह आगे कैसे बढ़ता है? वह अपनी पिछली जीतों, अपने पिछले पदकों और उस दर्द को याद करता है जिसे वो पहले भी पार कर चुका है।
वही यादें उसे फिर से दौड़ने की ताकत देती हैं।
लेकिन स्रोत में एक बात है जो मुझे अभी भी थोड़ी अव्यवहारिक लगती है।
कौन सी बात?
लेखक कहता है कि जब उनकी संपत्ति छीन ली गई तब भी उन्होंने आनंद मनाया। मेरा मतलब है, कोई अपनी जीवन भर की मेहनत से कमाई गई संपत्ति लूट जाने पर खुश कैसे हो सकता है?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जुड़ें, तो बात सिर्फ भौतिक संपत्ति छीन जाने या किसी वैरारी की तरह खुशी मनाने की नहीं है।
तो फिर असली कारण क्या था?
बात यह है कि उस संपत्ति के बदले उन्हें किस बात का आश्वासन मिल रहा था। वो उस नुकसान में भी आनंद इसलिए मना सके क्योंकि वे गहराई से जानते थे कि उनके पास एक बेहतर और स्थायी संपत्ति है,
एक स्वर्गीय संपत्ति।
हाँ, जिसे कोई भी राज्य, कोई भी सैनिक या कोई भी समाज उनसे नहीं छीन सकता। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक चाल चली है।
कैसी चाल?
रोमन समाज में संपत्ति का छीन जाना और सार्वजनिक रूप से जलील होना सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन लेखक ने उनके सामाजिक अपमान और हाशिए पर धकेले जाने की स्थिति को पूरी तरह पलट कर रख दिया।
अरे वाह!
उसने उस अपमान को सम्मान की प्रतियोगिता में बदल दिया जहां वे असली विजेता थे।
ये एक बहुत ही ताजा और कमाल का दृष्टिकोण है कि हार और शर्म को सम्मान के तमगे में बदल दिया जाए।
और ये रणनीति केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। इसकी तुलना रोमन इतिहासकार टैसिटस के एग्रीकोला में दर्ज एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण से की गई है।
अच्छा, उसमें क्या हुआ था?
वहाँ एक रोमन जनरल अपनी थकी हुई और हताश सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कोई नया लालच या धन का वादा नहीं देता। इसके बजाय वो उन्हें उनके पिछले युद्धों, उनके द्वारा पार किए गए भयंकर जंगलों और उनकी पुरानी जीतों की याद दिलाता है।
मतलब वो उन्हें याद दिलाता है कि वो कौन है।
बिल्कुल, अतीत की सफलता और पार की गई कठिनाइयां वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं।
यह मैराथन अब बहुत लंबी नहीं बची है और मंजिल करीब है, यह साबित करने के लिए इब्रानियों का लेखक प्राचीन धर्म ग्रंथों का सहारा लेता है।
हाँ, वो पुराने नियम से यशाया 36 का उपयोग करता है
जहाँ लिखा है बस थोड़ी ही देर में।
इसका उद्देश्य श्रोताओं को समय की कमी का एहसास कराना था ताकि वे थोड़ा और टिके रहें, यह सोचकर कि अंत बस आने ही वाला है।
लेकिन फिर वो हबकूक 2.34 के साथ कुछ ऐसा करता है जो काफी हैरान करने वाला है।
मैंने पढ़ा कि वो इन श्लोकों का एक कट्टरपंथी रूपांतरण कर देता है।
ये सच है, वो हबकूक के मूल पाठ के शब्दों और उनके क्रम को काफी हद तक बदल देता है
ताकि वो अपने श्रोताओं की वर्तमान स्थिति पर एकदम सटीक बैठ सके।
बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए, क्या प्राचीन और पवित्र शास्त्रों को इस तरह एडिट कर देना या अपने हिसाब से बदल देना उस समय एक बहुत बड़ा अपराध या टैबू नहीं माना जाता था?
हाँ, पवित्र ग्रंथों के एक एक शब्द को तो बहुत सहेज कर रखा जाता था।
ये तो वैसा ही है जैसे आप किसी क्लासिक पुराने गाने को लें, उसे सैंपल करें और आज की नई पीढ़ी के लिए एक नए रीमिक्स में बदल दें,
ताकि वो बीट सीधा उनके दिल पर लगे, है ना?
हाँ, और उन्हें अपनी कहानी लगे। तो एक प्राचीन लेखक ने धर्म ग्रंथों के साथ ऐसी स्वतंत्रता क्यों ली?
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। इसे समझने के लिए हमें मूल पाठ को देखना होगा। मूल हिब्रू और सिप्टुआजेंट में, जो कि पुराना यूनानी अनुवाद है, हबकूक की चेतावनी ये थी कि यदि आने वाला पीछे हटता है या देर करता है।
आने वाला मतलब उद्धारकर्ता।
हाँ, ये मुख्य रूप से ईश्वर के न्याय या उद्धारकर्ता के आने में होने वाली देरी के बारे में था। लेकिन इब्रानियों के लेखक ने इसे पूरी तरह से उलटकर विश्वासियों यानी धर्मी लोगों पर लागू कर दिया।
उसने इसे इस तरह लिखा, यदि धर्मी पीछे हटता है तो मेरी आत्मा उससे प्रसन्न नहीं होगी।
एकदम सही। इसके पीछे का याजकीय दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट और बहुत ही व्यावहारिक था।
तो ये याजकीय दृष्टिकोण क्या हासिल करना चाहता था?
लेखक अपने श्रोताओं के सामने किसी भी तरह का कोई असमंजस या भ्रम नहीं छोड़ना चाहता था। उसका लक्ष्य केवल दो स्पष्ट विकल्प रखना था।
सिर्फ दो विकल्प?
हाँ, पहला विकल्प विश्वास करके जीवन प्राप्त करो और दृढ़ बने रहो, और दूसरा विकल्प डर कर पीछे हटो और विनाश की ओर जाओ।
मतलब बीच का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है?
बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि वे अपनी पहचान छुपा कर भी रह लें और उद्धार भी पा लें। ये हबकूक का रीमिक्स श्रोताओं को तुरंत ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे वास्तव में किस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं।
ये उन्हें एक कड़ा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है।
हाँ, ये उन्हें जगाने का एक तरीका था।
ये तरीका बहुत ही प्रभावशाली है, और सच कहा जाए तो ये 2000 साल पुरानी पेपटॉक भले ही उस विशिष्ट प्राचीन समुदाय के लिए लिखी गई हो,
लेकिन इसका संदेश आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल, आज के आधुनिक जीवन और समाज की चुनौतियों पर यह बिल्कुल सटीक बैठता है। आज अक्सर देखने में आता है कि लोग अपनी आस्था या अपने गहरे जीवन सिद्धांतों को बस एक शौक की तरह मानते हैं,
एक हॉबी की तरह जिसे फुर्सत में किया जाए।
हाँ, एक ऐसा शौक जिसके बारे में हम सिर्फ अपने सुरक्षित क्लब में बंद दरवाजों के पीछे या अपने समान विचार वाले दोस्तों के बीच बात करते हैं। हम इसे अपने जीवन का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाते।
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अच्छी तुलना
है ना, जो हमारे हर रोज के फैसलों, हमारे व्यवहार और समाज में हमारे खड़े होने के तरीके को चलाए।
ये आधुनिक समाज का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आज हम देखते हैं कि पश्चिमी दुनिया में और धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर भी धर्म और गहरी आस्था का पूरी तरह से निजीकरण हो गया है।
लोग इसे एकदम प्राइवेट रखना चाहते हैं।
हाँ,
धर्म निरपेक्षता और भौतिकवाद ने एक ऐसा सामाजिक माहौल बना दिया है जहां मौसम के बारे में, राजनीति के बारे में या नई फिल्मों पर बात करना बहुत सामान्य और आरामदायक माना जाता है। लेकिन अपने विश्वास या अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करना
वो अजीब, असुविधाजनक या कभी कभी तो असभ्य भी मान लिया जाता है।
और यही वो बिंदु आता है जहां हम अपना वो साहस खो देते हैं जिसकी बात लेखक कर रहा था,
वही पैरसिया।
हाँ, पैरसिया। हम दुनिया की नजरों में समझदार, तार्किक या कूल दिखने के लिए अपनी आस्था को छुपाने लगते हैं। हम विवाद से बचना चाहते हैं, इसलिए हम चुप रहना पसंद करते हैं।
यही सबसे बड़ा खतरा है जिसकी ओर लेखक ने इशारा किया था, समाज की स्वीकृति को ईश्वर के सम्मान से अधिक महत्व देना।
सोशल एक्सेप्टेंस,
सामाजिक आराम और बिना किसी विवाद के शांति से जीने की ये निरंतर चाहत धीरे धीरे इंसान के उस साहस को दीमक की तरह खत्म कर देती है
जिसे इब्रानियों के पत्र में सबसे कीमती अधिकार बताया गया था।
बिल्कुल। इसके साथ ही हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि शिष्यत्व कोई एकांत में किया जाने वाला अभ्यास या केवल निजी मामला नहीं है।
ये दूसरों से भी जुड़ा है।
हाँ, ये एक वैश्विक समुदाय के प्रति जिम्मेदारी का भी विषय है, विशेष रूप से उस उत्पीड़ित वैश्विक चर्च के प्रति जो दुनिया के कई हिस्सों में आज भी अपनी आस्था के लिए भारी कीमत चुका रहा है।
अगर एक हिस्सा दुख में है
तो दूसरे हिस्से को उनके लिए खड़ा होना होगा।
एकदम सही।
तो आज हमने उस प्राचीन हाफ टाइम लॉकर रूम से क्या सीखा? पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हमने डर और आत्मविश्वास के बीच के उस नाजुक संतुलन को करीब से समझा,
और हमने काटा नाउमेन को भी समझा।
हाँ, एक दूसरे को गहराई से देखने के असली और शक्तिशाली अर्थ को जाना, जहाँ केवल नजर डालना काफी नहीं है बल्कि दर्द को समझना जरूरी है।
और हमने सामाजिक दबाव में आकर जानबूझकर पीछे हटने के छिपे हुए खतरों को भी पहचाना, जो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं।
बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस अध्ययन से निकलकर आती है वो ये याद रखना है कि ज्ञान प्राप्त करना या जीवन के कठिन संघर्षों में दृढ़ बने रहना कोई व्यक्तिगत प्रतियोगिता नहीं है
जहाँ इंसान अकेला दौड़ रहा हो।
हाँ, ये पूरी तरह से एक टीम स्पोर्ट है। हमें एक दूसरे की सख्त जरूरत है अंत तक टिके रहने के लिए और उस मैराथन को पूरा करने के लिए।
ये एक बहुत ही सशक्त विचार है, और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना उचित रहेगा।
कैसा सवाल?
आज के स्रोत ने हमें ये सिखाया कि एक दूसरे की समस्याओं और संघर्षों को गहराई से देखना, यानी काटा नाव मानिन, ही उस प्रेम और सहयोग के विस्फोट को जन्म देता है जिसकी हर समुदाय को जरूरत होती है।
बिल्कुल।
लेकिन जरा सोचिए, आज की हमारी ये आधुनिक डिजिटल दुनिया हमें क्या सिखा रही है? या मैं सिर्फ एक दूसरे की जिंदगियों, उनकी तस्वीरों और उनके विचारों को स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल करना सिखाती है?
बस ऊपर की तरफ खिसकाते जाना।
हाँ, हम हर दिन सैकड़ों लोगों को देखते हैं लेकिन किसी को सच में गहराई से नहीं देखते। तो क्या ये संभव है कि हमारी ये उथली डिजिटल कनेक्टिविटी, ये बिना रुके स्क्रॉल करने की आदत ही आज के युग का समुदाय को छोड़ देने का एक नया और अदृश्य तरीका हो?
ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और विचारणी का प्रश्न है।
इस विचार पर मनन करना बहुत जरूरी है। अगली बार जब स्क्रीन पर किसी की जिंदगी के हिस्से सामने आए और उंगलियां उन्हें बस आगे स्क्रॉल कर रही हों, तो ये सवाल खुद से पूछा जाना चाहिए
कि क्या हम सच में अपनी टीम के खिलाड़ियों को देख रहे हैं?
हाँ, या सिर्फ एक अंधी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं? उस हाफ टाइम लॉकर रूम की भावना को याद करते हुए ये सोचना जरूरी है कि असल में कौन हमारी उस गहरी परवाह का इंतजार कर रहा है।